धर्म का मर्म है जियो और जीने दो। 29 अगस्त को जैन महावीर भवन आदर्श नगर में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए जनाचार्य श्री ज्ञानचंद्र जी महाराज साहब ने फरमाया कि आज धर्म के बाजार में सभी धर्म प्रवर्तक लोग अपनी अपनी दुकान खोलकर बैठे हैं। सभी अपने अपने मान्य धर्म को श्रेष्ठ बताने का दावा कर रहे हैं। लॉर्ड मालिन ने एक पुस्तक लिखी है, उसमें 10,000 धर्मों की परिभाषा लिखी है, तब भी जैन बौद्ध धर्म की परिभाषा नहीं आ पाई। दार्शनिक कांट के शब्दों में अपने समस्त कर्तव्यों को ईश्वरीय आदेश समझना धर्म है। हेगल के अनुसार सीमित मस्तिष्क में रहने वाले असीम स्वभाव का ज्ञान धर्म है। मेयर्स मानव आत्मा का ब्रह्मांड विषयक स्वस्थ और साधारण उत्तर धर्म है। मनोविज्ञान शास्त्रीय आगस के अनुसार ईश्वर से प्रेम करना धर्म है। माक्टागाट कहते हैं, चित्त का वह स्वभाव जिसके द्वारा विश्व के साथ एक प्रकार से मेल कायम करते हैं वो धर्म है। जेम्स फ्रेजर के मत में धर्म मानव से ऊंची गिनी जाने वाली साधना है जो मानव पर नियंत्रण करने वाली बनती है। इस प्रकार सारे धर्म को पढ़ते पढ़ते पूरी जिंदगी लग जाए तब भी इंसान धर्म का स्वरूप नहीं समझ सकता है, तो धर्म के मर्म तक पहुंचना तो बहुत भारी काम है। धर्म के मर्म तक पहुंची थी द्रौपदी जब उनके 5 पुत्रों के हत्यारे को उनके सामने ला खड़ा किया और कहा गया कि लीजिए अपना बदला। तब द्रौपदी का मन बहुत रोया और अंत में कहा इसे छोड़ दो। सबको आश्चर्य हुआ। तब द्रौपदी बोली कि संतान के मरने का माता को कितना दुख होता है वो मैं अनुभव कर रही हूँ। वो मेरे कारण दूसरी माँ को ना हो, इसलिए छोड़ दो इसे। अश्वत्थामा छोड़ दिया गया। श्री कृष्ण वासुदेव बोले, द्रौपदी, आज जो तुमने काम किया है उसके सामने बड़े बड़े योद्धा भी परास्त है, हम भी श्रद्धा विभूत हैं। तुम्हारा काम सबसे कठिन है, अतः धर्म का मर्म है जीव रक्षा, अपराधियों को माफ करके सन्मार्ग पर लाना। एक ही तालाब से सारे गांव के लोग पानी लाए हैं, लेकिन जिस मटकी में लाए हैं वो मटकी उनकी है। किसी गांव के घर में कोई पानी पीने गया तो पूछता है कि आप कौन हैं, तो वो कहता है हरिजन। तब वह बोला, मैं हरिजन के घर का पानी नहीं पीता, उसके आगे के घर कोई जाट का है, कोई ब्राह्मण का है, तो कोई महेश्वरी का है, उनके घर का पानी उनका हो गया, जबकि सारे गांव के लोग एक ही तालाब से पानी लाए हैं। पानी एक है, मटकियां अलग अलग है। इसी प्रकार धर्म का मौलिक स्वरूप है। एक मटकियों की तरह संप्रदाय है जिनके नाम पर झगड़े चल रहे हैं। झंडा महावीर का है, वो तो कभी का उठ चुका, डंडा लिए लिए घूम रहे हैं। सारे झगड़े अपनी मान्य संप्रदाय एवं गुरुओं के खड़े कर रखे हैं। बस मेरे गुरु का नाम ऊंचा रहे, मेरे गुरु की जय बोली जाए, मेरे गुरु का पर्दा लगे, इसके लिए श्रावकों को लड़ा दिया जाता है। बस उन्हें थोड़ा मंत्र का आकर्षण देकर सांप्रदायिक विवाद पैदा किए जा रहे हैं। ऐसे गुरुओं से सावधान रहिए। महाराज को नहीं महावीर को पूजो, संप्रदाय को नहीं संत को पूजो, व्यक्ति को नहीं गुणों को पूजो। जैन धर्म के इतिहास में ऐसे ऐसे जैनी हुए हैं जिन्होंने जैन धर्म का मर्म समझकर अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर भी इंसानों की रक्षा की है। ऐसे ही हुमायूं के शासनकाल में जैनी भैरव शाह का प्रसंग सामने है। भारत की राजधानी दिल्ली में किसी समय हुमायूं राजा का शासन था। वह बहुत क्रूर प्रकृति का था, धन और सत्ता का अत्यंत लोभी, बड़ा अहंकारी था। एक बार हुमायूं ने दुश्मन राजा पर हमला किया। अचानक हुए हमले से दुश्मन राजा हार गया और हुमायूं जीत गया। हुमायूं ने दुश्मन राजा के 9,000 सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद हुमायूं ने अपने विश्वस्त सैनिकों को आदेश दिया कि इन सभी कैदियों को दूर दूर प्रदेश में ले जाकर उन्हें तड़पा तड़पा कर बेच डालो, या फिर ऐसे जंगल में छोड़ दो जहां बाघ, चिता, शेर आदि खूनखार जानवर हो, जो इन सबको कच्चा ही चबा जाए। हुमायूं का क्रूर आदेश पाकर हुमायूं के विश्वस्त सैनिक उन सभी कैदियों को लेकर गांव गांव, नगर नगर रास्ता पार करते ले जा रहे थे। पैदल पैदल चलते कैदियों को प्यास लगी, तब उन्होंने पानी मांगा। पानी मांगने पर सैनिक चाबुक जोर जोर से चांटे मारते, भूख लगने पर खाना मांगते तो जोर जोर से चाबुक की मार मारते। इस तरह भूखे प्यासे ऊपर से अपार मार ही मार कैसे चलते, अतः चलते चलते बैठ जाते। बैठते ही सैनिक उनकी पीठ पर खूब बोझा रख देते। इस प्रकार उन्हें अनेक प्रकार की बेहद यातनाएं दिए जा रहे थे। एक पशु को भी जितनी यातनाएं नहीं मिलती है उतनी यातनाएं उन सभी कैदियों को मिल रही थी। वे अपने जीवन से उपरत हो मरना चाहने लग गए थे, वो भी उनके हाथ में नहीं था। वे अपने उस तत्कालीन जीवन से अत्यधिक दहखी थे। ऐसी ही अत्यधिक यातनाओं के बीच रोते बिलखते लड़खड़ाते हुए एक गांव में पहुंचे। वहां हुमायूं के सैनिकों ने पड़ाव डाला। उस गांव में भैरूसा नामक जैन मंत्री रहता था। गांव के आने जाने वाले लोगों ने इन कैदियों का जीवन देखा, देखकर बहुत दहखी हुए। हे भगवान, कैसा जुल्म, कितना त्रास, कितना अत्याचार। आने जाने वाले सभी व्यक्तियों के मुख पर एक ही चर्चा, बात फैलते फैलते गांव के मंत्री भैरूसा के कानों में पहुंची। कैदियों की करुणा की दशा सुनकर सोचा, मुझे इन सबकी रक्षा करनी है। भैरूसा मंत्री के जैन धर्म रोम रोम में बसा था। वह बेहद दयालु और करुणावंत थे। अनुकंपा से इनका जीवन ओतप्रोत था। भैरूसा को इस बात का पता चलते ही तुरंत जिस जगह कैदी थे वहां पहुंचे। उन कैदियों की करुणाजनक स्थिति देखकर भैरूसा की आंखों में आंसू आ गए। भैरूसा हुमायूं के आदमी से मिले, उनसे बातचीत की, तब पता चला कि ये बेचारे कैदी विदेश में कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। भैरूसा ने मन में सोचा कि मेरे रहते इतना बड़ा पाप नहीं होने दूंगा। इन सबकी रक्षा करने के लिए मुझे अपना बलिदान देना पड़ेगा तो भी दूंगा, पर इन सबको जरूर बचाऊंगा। भैरूसा ने तुरंत कुछ निर्णय कर हुमायूं के आदमी से कहा कि आप 3 दिन तक यहीं रुकें। मेरे पुनः यहां आने के बाद आप यहां से आगे जाएं, पर उससे पहले नहीं, आप सभी लोगों का खाने पीने का सारा खर्चा मैं दूंगा। हुमायूं के नौकरों ने कहा, ठीक है, हमें आपकी बात मंजूर है, आप 3 दिन में जरूर आ जाएं। भैरूसा, ठीक है। उसके तुरंत बाद भैरूसा घोड़े पर सवार होकर सीधे दिल्ली बादशाह के पास पहुंचे। हुमायूं के पास जाकर उनको नमस्कार किया, फिर भेंट स्वरूप हुमायूं को कीमती जेवरातों की सौगात पेश की। हुमायूं ने कीमती रत्नों को देखा तो आंखों में चमक आ गई। भैरूसा की नम्रता, विनय, विवेक, वाणी की मधुरता आदि देखकर बादशाह बहुत खुश हो गए। हुमायूं ने भैरूसा से कहा, मांगिए, आपको क्या चाहिए? भैरूसा ने कहा, बादशाह, आपने मुझे मांगने को कहा है तो मैं आपसे इतना ही मांगता हूं कि आप मुझे इस कोरे कागज पर हस्ताक्षर कर दें। आप मुझ पर विश्वास रखें, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे आपका नाम बदनाम हो। मैं विश्वासघात नहीं करूंगा। इन हस्ताक्षरों का उपयोग आपके गौरव को बढ़ाने वाला होगा। भैरूसा की प्रामाणिकता, विनय, नम्रता आदि गुणों से आकर्षित होकर हुमायूं ने कोरे कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। हुमायूं को भैरूसा पर इतना विश्वास था कि यह गलत काम नहीं करेगा, इसलिए हस्ताक्षर करने से पहले पूछा तक भी नहीं कि तुम इन हस्ताक्षर का क्या करोगे। हुमायूं राजा के हस्ताक्षर वाला कागज लेकर भैरूसा अपने गांव वापस आ गए। हस्ताक्षर किए कागज पर भैरूसा ने लिख दिया कि 9,000 कैदियों को तुरंत रिहा कर दो। यह वाक्य हुमायूं के हस्ताक्षर के ठीक ऊपर के भाग में लिखा गया था। फिर भैरूसा ने जाकर हुमायूं राजा के सैनिकों के सामने उस कागज को रख दिया। सैनिकों ने उस कागज को पढ़ा और देखा हुमायूं राजा के हस्ताक्षर भी है। तब सैनिक बोले, इस कागज पर बादशाह के हस्ताक्षर है, अतः हम कैदियों को छोड़ देते हैं। 9,000 कैदियों को तुरंत उसी समय छोड़ दिया गया। सारे अत्याचारों से मुक्त होकर सभी कैदी बहुत खुश हो गए और भैरूसा पर आशीर्वाद की बौछार करने लगे। तब भैरूसा ने कहा, भाइयों, आपके डहकों का अंत हो गया। आपको छुट्टी मिल गई, उसका सारा श्रेय हुमायूं राजा को है। देखो, इस कागज पर हुमायूं राजा के हस्ताक्षर है। वे करुणावान है, दयालु है। भैरूसा से राजा का नाम सुनकर सारे कैदी एक साथ कहने लगे, महाराज, आप दीर्घायु बने, सदा स्वस्थ रहें आदि अनेकानेक आशीर्वादक वचनों से राजा पर बौछारे करने लगे। फिर सारे कैदी खुशी खुशी से अपने अपने घर चले गए। कैदियों को मुक्ति दिलाने के बाद भैरूसा हस्ताक्षर वाला कागज और तलवार लेकर घोड़े पर बैठकर दिल्ली पहुंचे। हुमायूं राजा के पास जाकर कहा, हे राजन, आप यह तलवार मेरी गर्दन पर चलाइए, तलवार के एक वार से मेरा सर काट दें। हुमायूं राजा आश्चर्यचकित होते हुए बोले, क्यों भाई, ऐसी क्या बात है? तुमने क्या अपराध किया जो मैं तलवार चलाऊं? भैरूसा ने कहा, मैं आपका अपराधी हूं। हुमायूं ने पूछा, कैसे? भैरूसा ने कहा, राजन, आपके द्वारा पकड़े गए 9,000 कैदियों का डक मुझसे देखा नहीं गया था, इसलिए मैंने आपसे कोरे कागज पर आपके हस्ताक्षर करवा लिए। उन हस्ताक्षरों का उपयोग मैंने उन कैदियों को मुक्ति दिलाने में किया। मेरे एक के बलिदान देने से 9,000 सैनिकों की जिंदगियां बच पाती हो तो उससे बढ़कर मेरे जीवन का सदुपयोग और क्या हो सकता है? अतः राजन, मैं आपका अपराधी हूँ। पर राजन, इन कैदियों को जब छोड़ा गया तब मैंने आपका नाम बताया कि तुम सबको जीवनदान हुमायूं राजा ने दिया है। उस समय सभी कैदी इतने हर्षविभोर हो गए कि आपका नाम लेकर आनंद से नाचने लगे, आपका गुणानुवाद करने लगे, आपके ऊपर आशीर्वादों की बौछार कर दी। उस समय आनंद का जो बोलबाला था उसका मैं वर्णन कर नहीं सकता। इतना कहकर हस्ताक्षर वाला पत्र राजा को पढ़ने के लिए दे दिया। यह सब सुनते ही हुमायूं तो स्तब्ध रह गया। मंत्री की कैसी अनोखी करुणा एवं भव्य भावना! स्वयं उसने कैदियों को मुक्त किया और उसका यश मुझे समर्पित कर दिया है। मैं तो कुछ जानता तक नहीं, मेरा नाम लेकर हजारों को अभयदान दिया। हुमायूं ने कहा, धन्य है इस भारत भूमि को, धन्य तुम्हारी जननी को, जिसने ऐसे सुपुत्र को अपनी गोद में जन्म दिया। भैरूसा, तुझको मेरा कोटि कोटि धन्यवाद है। तुमने अपने प्राणों की परवाह नहीं करके हजारों के प्राणों की रक्षा की। राजा हुमायूं जैन मंत्री भैरूसा से इतने प्रभावित हो गए कि सिंहासन से नीचे उतरकर भैरूसा के पास आए और हर्षाश्रु के साथ भैरूसा को गले लगाकर भेंट की। इसे कहते हैं करुणा। डह की जीवों के प्रति अनुकंपा। धर्म को ऊंचा रखना चाहते हैं तो अपने आचरण को भी ऊंचा उठाएंगे। आप चाहते हैं कि आपकी इच्छा पूरी हो तो यह व्यवस्था भी शास्त्रकारों ने अपने ढंग से बताई है। सुदर्शन सेठ ने जान की परवाह किए बगैर प्रभु के दर्शन के लिए आगे बढ़े। तभी देवता भी झुक गया। पूरे राजगृह नगर में एक ही पुण्यवान श्रावक था सुदर्शन, जिनके कारण से इतने बड़े संकट से मुक्ति मिली। लालेतांग गोष्ठी को राज्य की दी गई छूट का दुरुपयोग हुआ। यही कारण था कि 6 पुरुष और 1 स्त्री मारे गए और राजगृह नगर के भी हर दिन 6 पुरुष 1 स्त्री मारे गए, क्योंकि पूरा शहर अन्यायी हुआ। उन्होंने ललितांग गोष्ठी को दी गई छूट का मौन समर्थन क्यों किया? उसी के कारण पूरे शहर पर संकट आया। दूसरी बात, किसी के शरीर में देवता आ जाए तो वो इतना अजीबोगरीब काम करता है जो मानव के बस का न हो। जैसे कि अर्जुन माली के शरीर में यक्ष आने से वो इंसानों की ताकत से ऊपर उठ गया। अर्जुन को कोई पकड़ नहीं पाया, वो सबको मार रहा था। आजकल जो लोगों के शरीर में तथाकथित देवता आते हैं और वो बोलता है, यह हकीकत नहीं लगता है। ऐसी घटनाओं के चक्कर में ना आया जाए। भविष्यवेता नेस्तनाद मस्क की घोषणा के अनुसार 21वीं सदी में पूरे विश्व पर नियंत्रण करने वाला व्यक्ति इंडिया का होगा। तो इंडिया को आध्यात्म की ताकत सबसे अधिक है। ऋषि मुनियों का देश है, जहां उत्कृष्ट तप होता है, जिसके कारण देश बचा रहेगा। सारी महाशक्तियां दुश्मन हो जाए तब भी इस देश का सर्वनाश नहीं हो सकता है, क्योंकि ऋषि मुनियों के तप त्याग से निकलने वाली तरंगे इंडिया के चारों तरफ इतना जबरदस्त नेटवर्क को जाम कर देगी कि विदेशी ताकतें इंडिया का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। जिस प्रकार फोन का नेटवर्क जाम किया जाता है, वैसे ही अध्यात्म का आभामंडल हिंसा का नेटवर्क जाम कर देगा। जब तक इस देश में पर्युषण पर्व की साधना चलती रहेगी, इस देश की रक्षा होती रहेगी। धर्म प्रभावना। आज प्रवचन पश्चात की प्रभावना श्री अरिहंत मार्गी जैन युवा महासंघ के अध्यक्ष श्री शरद जी मालू कमलानगर दिल्ली की तरफ से रहा। 5-5 सामायिक की प्रभावना का लाभ श्री रामनारायण जी अनिश जी जैन मंडी रोड जलंधर की तरफ से था। 30 अगस्त की प्रभावना गुप्त गुरु भक्त की तरफ से रहेगा। कल के 5-5 सामायिक का प्रभावना का लाभ श्री सुरेश जी सुपुत्र श्री मूर्ति देवी जी जैन मंडी रोड जलंधर की तरफ से रहेगा। श्री अरिहंत मार्गी जैन महासंघ सदा जयवंत हो।